पाठ 32 अध्याय 23 और 24।
आज हम व्यवस्था विवरण 23 का अध्ययन समाप्त कर लेंगे और अध्याय 24 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 23 के अंतिम पद 18 और 19 पर हमने विचार किया था, जो वेश्याओं के विषय में थे, जो एक मूर्ति पूजक मंदिर के लिए एक पवित्र पेशे के रूप में काम करती थी, क्योंकि इससे उस मंदिर को नियंत्रित करने वालों को लाभ होता था। वेश्यावृत्ति के संदर्भ में ही गलत तरीके से अर्जित धन को प्राप्त न करने और इसे परमेश्वर को भेंट के रूप में देने की अवधारणा का परिचय दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर इसे कभी अंगीकार या स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति वास्तव में इस तरह के कार्य के साथ जो कर रहा है, वह परमेश्वर को कुछ ऐसा पेश करना है जो व्यभिचार का उत्पाद है, और उम्मीद करता है कि वह इसे एक अच्छी चीज के रूप में घोषित करेगा, क्योंकि यह अच्छे हालांकि गुमराह इरादों के साथ दिया जा रहा है।
आइए व्यवस्था विवरण 23 की पद 20 को फिर से पढ़ें। हम इस छोटे से भाग को फिर से पढ़कर शुरुआत करेंगे। व्यवस्था विवरण 23 का 20 को पुनः अंत तक पढ़ें। यह अगला नियम उन आज्ञाओं के परिवार का हिस्सा है जिन्हें मैंने सच्चे धर्म के नियमों के रूप में लेबल किया है, उसी अर्थ में जैसे यीशुआ के भाई याकूब ने सच्चे धर्म को परिभाषित किया था। सच्चे धर्म का अर्थ है व्यवस्था की भावना को लेना, दया और प्रेम की उदार मदद झोरना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के साथ इसे व्यावहारिक रूप से लागू करना। यह विशेष नियम किसी को ऋण देने से संबंधित है, और नियम यह है कि यदि उधारकर्ता एक भाई, एक इसराइली जिसका अर्थ है इसराइल का पूर्ण नागरिक है, तो ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि एक विदेशी बाहरी व्यक्ति कहता है से ब्याज लेना स्वीकार्य है।
विदेशी या अजनबी या बाहरी व्यक्ति आपके बाइबल संस्करण के आधार पर के रूप में अनुवादित शब्द नौकरी है, और नौकरी विदेशी का वर्गीकरण है जिसका इसराइल से कोई संबंध नहीं है, जो खुद को इसराइल के साथ नहीं पहचानता है और आम तौर पर इसराइल के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखता है, सिवाय इसके कि वह किसी कारण से इसराइल के साथ शांति से रहने की अनुमति के लिए कुछ हद तक आभार व्यक्त करता है। आम तौर पर इस कानून का मतलब उन यात्रा करने वाले व्यापारियों से है जो दूर देशों से आ रहे हैं, या विदेशी व्यापारी जिन्होंने इसराइल में अपना व्यवसाय स्थापित किया है, क्योंकि वे वहां अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के व्यक्ति को पैसे या भोजन या आम तौर पर कोई भी मूल्यवान वस्तु उधार देना एक व्यवसाय प्रस्ताव से जुड़ा हुआ था, न कि एक इब्रानी द्वारा दूसरे इब्रानी को उधार देने के अंतर्निहित आधार से। और वह आधार यह है कि इब्रानी उधारकर्ता एक गरीब व्यक्ति था जो बहुत मुश्किल में था, और अगर उसे मदद नहीं मिली तो उसका स्वास्थ्य और कल्याण खतरे में था। खास तौर पर मूसा और यहोशू के दिनों में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसराइल में पैसे यानी चांदी या सोना उधार देने की व्यवस्था स्थापित की गई थी, बल्कि आम तौर पर अनाज या उपज के रूप में भोजन उधार दिया जाता था। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कहीं और भी पैसे उधार देने वाले स्थापित किए गए थे, और लाभ के लिए गरीबों को पैसे उधार देना आम बात थी और उधारकर्ता के लिए बहुत महंगा था। मेसोपोटामिया की संस्कृतियों के अभिलेखों से पता चलता है कि चांदी के ऋण पर 25% और अनाज के ऋण पर 50% ब्याज आदर्श था। इस तरह के ब्याज ने केवल गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर बनाने का काम किया। इसराइल में रहने वाले ये नौकरी निस्संदेह ऐसे देशों से आए थे जहां वे चाहें तो पैसे उधार ले सकते थे, लेकिन भयानक ब्याज दरों पर। प्रभु कहते हैं कि इसराइल इन विदेशी व्यापारियों को उनकी इच्छानुसार बिना ब्याज के अर्न देकर सब्सिडी देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसराइल गरीब इब्रानियों को बिना ब्याज के ऋण देने के लिए बाध्य है, और उनके बीच रहने वाले वास्तव में गरीब विदेशियों को भी, क्योंकि इसराइलियों के बीच यह दायित्व है कि वे किसी दूसरे के दुर्भाग्य से लाभ न उठाए। आज इन व्यवस्थाओं को देखना और खुद से यह सोचना कि यह कितना भयानक है कि लोन कंपनियां औसत नागरिकों को पैसे उधार देकर इतनी दौलत कमाती हैं,
एक झटके की प्रतिक्रिया है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां 20% या उससे ज्यादा ब्याज लेती हैं और कार टाइटल लोन कंपनियां और पॉन शॉप उससे भी ज्यादा ब्याज लेती हैं और लगभग हमेशा यह हमारे समाज में सामाजिक रूप से वंचित लोगों से लिया जाता है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि सेब और संतरे को एक जैसा न समझें। बहुत ज्यादा खास तौर पर अमेरिका में ऐसे लोग हैं जिन्हें गरीब के रूप में लेबल किया जाता है क्योंकि वे अपने पैसे या अपने क्रेडिट के साथ बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं या वे जल्दी में होते हैं और किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहते, इसलिए वे मूर्खतापूर्ण सौदे करते हैं या शायद वे काम करने से इनकार करते हैं या सभी के लिए उपलब्ध शिक्षा प्राप्त करने से इनकार करते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो शराब या ड्रग्स का अत्यधिक सेवन करते हैं और फिर सब कुछ खो देते हैं और हम उन्हें गरीब और वंचितों के साथ जोड़ देते हैं। बाइबल आम तौर पर ऐसा नहीं करती क्योंकि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपने स्वयं के निर्णयों और कार्यों के परिणामों को सहना ही शास्त्र आधारित जीवन का मूल है। हम पूरे वचन नए नियम में भी कई व्यवस्था और कहावतें पाते हैं जो माता पिता के शराबी और निकम्मे बेटों को मृत्यु दंड की सजा देते हैं और आलसी और मूर्खों को अपने भाग्य को भुगतना पड़ता है भले ही इसे देखना दिल तोड़ने वाला हो। ईश्वर की गरीबी की परिभाषा यह है कि शायद खराब स्वास्थ्य के कारण या समाज द्वारा जानबूझकर प्रताड़ित किए जाने के कारण या काम न मिलने के कारण या अप्रत्याशित मृत्यु और विनाश के कारण या अन्य कई स्थितियों के कारण जिसके कारण उनकी अपनी कोई गलती न होने के बावजूद वे अपने या अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। गरीबी की परिभाषा यह नहीं है कि आप अपने क्रेडिट का अत्यधिक उपयोग करें और फिर आपका घर वापस ले लिया जाए, इसलिए अब आपको एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहना होगा। गरीबी का मतलब यह नहीं है कि आप बस से काम पर जाएं क्योंकि आपके पास कार नहीं है, भले ही बस से काम पर जाना समय लेने वाला और असुविधाजनक हो। गरीबी का मतलब है कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है या आपके सिर पर छत नहीं है या ठंड के मौसम में आपके पास पहनने के लिए कोई गर्म कोट नहीं होता। बाइबल के युग में महिलाओं और बच्चों और विशेष रूप से विधवाओं और अनाथों को जीवन के लिए खतरनाक स्थितियों में पाया जा सकता था क्योंकि वे पारंपरिक रूप से समाज के संचालन के तरीके के कारण खुद की देखभाल करने में असमर्थ थे। विकलांग और बीमार लोग भी इस श्रेणी में आते थे, साथ ही विदेशी लोग जो अपने विदेशी स्वामियों से गुलामी से बचने के लिए इज़राइल आए थे। ईश्वर कहते हैं कि सभी इज़राइल को इन लोगों की मदद करनी है और सुनिश्चित करना है कि उनके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त है, अन्यथा वे ईश्वर के लोगों द्वारा दिखाई गई दया की कमी के कारण उसे पुकारेंगे और इस प्रकार मानवतावाद के तोरह आदेशों को तोड़ेंगे। और जो लोग समाज के सबसे कमजोर लोगों से मुंह मोड़ते हैं वे प्रभु के विरुद्ध पाप करेंगे और इसके परिणाम भुगतने होंगे। मूलतः यह सामाजिक जिम्मेदारी और अंतर्निहित निष्पक्षता के बारे में एक व्यवस्था है। इस विषय पर यीशु ने बहुत कुछ कहा। अगला नियम पद 22 से 24 में बताया गया है और यह वास्तव में एक आकर्षक विषय को खोलता है जिसके इर्द गिर्द यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के कई सिद्धांत बने हैं। यह यहोवा के प्रति प्रतिज्ञा करने का विषय है। यह नियम बताता है कि जब आप कोई प्रतिज्ञा करते हैं जिसका अर्थ है कि आप परमेश्वर से किसी तरह का वादा करते हैं और उनके नाम को जमानत के रूप में पुकारते हैं, तो आपको अ उस वादे को निभाना चाहिए और ब उसे समय पर पूरा करना चाहिए। उस प्रतिज्ञा को न निभाना अपने आप में एक पाप है, चाहे वह प्रतिज्ञा कितनी भी बारीकियों न हो या आपके द्वारा प्रतिज्ञा करने के बाद से परिस्थितियों कितनी भी बदल गई हों, यहां तक कि ऐसी परिस्थितियां जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि बाइबल का लगभग हर अध्याय लोगों द्वारा किसी ना किसी प्रकार की प्रतिज्ञा लेने या तोड़ने के बारे में है, तो आइए हम इसकी थोड़ी जांच करें ताकि हम ईश्वर से प्रतिज्ञा लेने की इस अति प्राचीन प्रथा को समझ सकें। हमारे वर्तमान युग में यह याद रखना अच्छा है कि अतीत में देवी देवताओं और अन्य आत्मिक प्राणियों का अस्तित्व भी उतना ही सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता था और माना जाता था जितना कि मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए हवा में सांस लेना और पानी पीना आवश्यक है। यह केवल 1700 के दशक की शुरुआत में ज्ञानोदय की अवधि के बाद से ही है कि कांट और वोल्टेयर और ह्यूम जैसे कुछ दार्शनिकों ने उस सार्वभौमिक विश्वास को चुनौती दी और कहा कि केवल अज्ञान और अज्ञानी ही इस तरह के अंधविश्वासी बकवास को स्वीकार करते हैं कि एक अदृश्य सर्वशक्तिमान ईश्वर है या कि देवदूत या आत्मिक प्राणी है, क्योंकि यह आधार वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं था। इस प्रकार मात्र 300 वर्ष पूर्व ही नास्तिकता और धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद का जन्म हुआ।
मेरा कहना यह है कि 1700 के दशक से पहले देवताओं से प्रतिज्ञा करना भोजन करने जैसा ही सामान्य था। यह इसराइलियों के लिए बाकी दुनिया से अलग नहीं था, सिवाय एक बात के, मूर्ति पूजक देवताओं के बारे में कहा जाता है कि वे चाहते हैं कि उनके अनुयायी ऐसी प्रतिज्ञाएं और वचन लें, लेकिन इसराइल के प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनसे प्रतिज्ञाएं और वचन नहीं लेता है तो वे ऐसा करेंगे। उन मूर्ति पूजक मंदिरों ने अपने मूर्ति पूजक पुजारियों के साथ मिलकर व्रत लेने का उत्साह पूर्वक समर्थन क्यों किया? क्योंकि मन्नत मांगने का मतलब था उस देवता को भेंट चढ़ाना। अंत में बेशक वह भेंट मंदिर के पुजारियों के हाथों में चली गई। यह इसराइल में भी अलग नहीं था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मन्नत मांगता था तो उसे शुरू करने और पूरा करने के लिए बलिदान और भेंट की आवश्यकता होती थी और उनमें से कई पुरोहित वर्ग को भेंट दी गई। इसराइल में मन्नत मानने के उद्देश्य बहुत अलग अलग थे। आमतौर पर मन्नत परमेश्वर से उनकी सहायता के लिए एक याचिका थी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज के होने या न होने की सख्त इच्छा रखता हो, या शायद उन्हें परेशानी से राहत की जरूरत हो। हो सकता है कि वे युद्ध में जीत या बीमारी से ठीक होने की इच्छा रखते हो। मन्नत मानने वाला व्यक्ति आम तौर पर परमेश्वर के लिए कुछ करने का वादा करता था अगर वह उनकी जरूरत या इच्छा को स्वीकार करते। परमेश्वर को दिया जाने वाला भुगतान या भेंट आमतौर पर कुछ मूल्यवान होता था। हालांकि नाजरीत मन्नत के मामले में शुरुआती भेंट अक्सर किसी ऐसी चीज से परहेज करने के लिए होती थी जो व्यक्तिगत आनंद जैसे शराब लाती हो। मूर्ति पूजक दुनिया में प्रतिज्ञाएं मूल रूप से रिश्वत के रूप में बनाई गई थी। यह अपेक्षा की जाती थी कि उपासक अपनी मन्नत की भेंट के माध्यम से सचमुच किसी विशेष देवता या देवी की कृपा खरीद रहा है। यहोवा कहता है कि उसे भोजन या पेय की आवश्यकता नहीं है और वह पहले से ही अस्तित्व में मौजूद हर चीज का मालिक है, इसलिए उसके कार्य के बदले में उसे किसी तरह का पैसा या मूल्यवान वस्तु भेंट करना उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। इसके अलावा वह संप्रभु है और उसकी इच्छा को खरीदा नहीं जा सकता। फिर भी यह बात इब्रानी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कोशिश करने से नहीं रोक पाई और परिणाम अक्सर भयानक होते थे। हालांकि प्रभु प्रतिज्ञाओं को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, लेकिन वे यह भी नहीं कहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत या पापपूर्ण है। इसलिए पद 23 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति यहोवा से कभी भी प्रतिज्ञा नहीं करने का विकल्प चुनता है तो यह पाप नहीं है। मसीह यहां तक कहते हैं कि सिर्फ हां हां और ना ना कहना और शुरू से ही पूरी प्रतिज्ञा प्रक्रिया से बचना कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि जैसा कि अगले पद में कहा गया है और मैं इसे संक्षेप में कहता हूं, जो कुछ भी तुमने मुझसे वादा किया है उसे पूरा करोगे या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कि प्रभु से किए गए वादे के अनपेक्षित परिणाम ही समस्या है। हम भविष्य में एक सेकंड भी आगे नहीं देख सकते, इसलिए हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम किसी ऐसी चीज को पूरा कर पाएंगे जिसे करने की हमने कसम खाई है या नहीं की है, जिसे बनाने में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं, या जिसमें कोई और शामिल हो सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है जिस पर हमारा बहुत कम नियंत्रण हो। पूरी बाइबल में शायद सबसे दुखद परिणाम यह है कि कसम खाने के इरादे सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे भयावह अनपेक्षित परिणाम का सामना करना पड़ता है, जो यिप्ताह की कहानी है, जो चाहता था कि युद्ध में प्रभु उसे आशीर्वाद दें
और इसलिए उसने कसम खाई कि अगर प्रभु उसे जीत दिलाएंगे तो वह अपने सैन्य अभियान से घर लौटने पर अपने दरवाजे से सबसे पहले आने वाली चीज को होम बलि के रूप में चढ़ाएगा। स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद करते हुए कि यह किसी प्रकार का जानवर होगा जो उसका स्वागत करेगा, वह तब तबाह हो गया जब उसकी इकलौती बेटी उत्साह से उसके पास दौड़ी और दरवाजे से अंदर घुसी। चूंकि युद्ध वास्तव में जीत लिया गया था, इसलिए उसने अपनी कसम का पालन किया। इस कहानी में कई सबक हैं जो हम आज नहीं बताएंगे, बस इतना जान लीजिए कि यिप्तह ने इसका पालन किया क्योंकि वह पूरी तरह से समझ गया था कि व्यवस्था विवरण 23 के इस व्यवस्था में कोई अपवाद नहीं है। इस प्रकरण से हम जो सीख सकते हैं उसके बारे में मैं अभी केवल दो बातें बताना चाहता हूं। एक, परमेश्वर ने यिप्तह की बेटी की मानव बलि नहीं चाही, न ही मांगी और न ही स्वीकार की। और दो, परमेश्वर को यिप्तह से कोई प्रतिज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं थी ताकि वह अपनी आशा के अनुसार विजय प्राप्त कर सके। मुझे यकीन है कि अगर वह अपनी कब्र से बोल सकता तो हम सभी के लिए यिप्तह की सलाह यही होगी कि शायद अपनी शादी की शपथ के अलावा कोई शपथ न लें, क्योंकि ऐसा करना न केवल आपके लिए बल्कि उन अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक होगा जो आपकी शपथ से प्रभावित हो सकते हैं। इस अध्याय की अंतिम आज्ञा पद 25 और 26 में दी गई है और यह पड़ोसी की फसल से खाने के अधिकार से संबंधित है। और नियम यह है कि कोई व्यक्ति अनाज के कुछ दाने तोड़कर खा सकता है या कुछ अंगूर तोड़कर अपनी तत्काल भूख मिटा सकता है, लेकिन वे डॉगी बैग नहीं मांग सकते, वे आकर टोकरी नहीं भर सकते, न ही दरांती लेकर फसल काट कर ले जा सकते हैं। यह वास्तव में गरीबों को खिलाने के बारे में नहीं था, क्योंकि गरीबों के लिए पहले से ही कटाई के नियम स्थापित किए गए थे और वास्तव में गरीबों को केवल वही खाने तक सीमित नहीं किया गया था जो वे मौके पर खा सकते थे, बल्कि यह विशेष व्यवस्था यात्रियों के लिए है। प्राचीन समय में यात्रा करते समय किसी के खेत से होकर गुजरना पूरी तरह से जायज था। हर जगह जहां आपको यात्रा करनी होती थी वहां कोई अच्छी तरह से परिभाषित रास्ता या सड़क नहीं होती थी। कभी कभी बस एक सामान्य दिशा में निकल जाना जरूरी होता था और चूंकि खेत हर जगह फैले हुए थे इसलिए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए खेतों के किनारों के चारों ओर घूमना बहुत कठिन होता। साथ ही रास्ते में कोई विश्राम स्थल या छात्रावास नहीं थे और चूंकि अधिकांश आम लोग पैदल यात्रा करते थे इसलिए वे भारी सामान नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए जब वे किसी खेत या अंगूर के बाग से गुजर रहे होते थे और उन्हें भूख लगती थी तो व्यवस्था उन्हें उस खेत या अंगूर की उपज को सीमित मात्रा में खाने की अनुमति देता था। हमें मत्ती 12 में नए नियम में इस सटीक स्थिति की एक दिलचस्प तस्वीर मिलती है जब यीशुआ और उनके शिष्य कुछ फरीसियों के साथ इस बात पर विवाद में पड़ गए कि वे एक खेत से कुछ अनाज तोड़कर खा रहे थे जिससे वे गुजर रहे थे व्यवस्था विवरण 23 में यात्रियों के इस नियम के अनुसार। लेकिन मुद्दा चोरी करने या किसान का फायदा उठाने का नहीं था, बल्कि यह था कि यह एक सप्त के दिन हुआ और इस तरह यीशुआ पर सप्त के दिन को अपवित्र करने का आरोप लगाया गया। निस्संदेह ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सप्त के दिन, जैसा कि फरीसियों द्वारा परिभाषित किया गया था, कि अनुमति से ज्यादा चला था ताकि शहर के बाहर खेत में जा सके और खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर सके, इसलिए कुछ परंपराओं के अनुसार इसे भी काम माना जाता था। यीशुआ को ऐसा नहीं लगता था कि 1300 साल पहले मूसा को दिए गए उनके नियमों को यहूदी धर्म द्वारा बनाए गए मानव निर्मित सिद्धांतों की नवीनतम श्रृंखला द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 24 पर चलते हैं।
व्यवस्था विवरण अध्याय 24 पूरा पार है। यह दिलचस्प है कि हालांकि हम तोरा और बाइबल में अक्सर एक इब्रानी आदमी द्वारा अपनी पत्नी को तलाक का रिट, इब्रानी में गेट देने के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में तोरा में तलाक के कोई सीधे और निश्चित व्यवस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में, जबकि हमें विवाह और यहां तक कि पुनर्विवाह के बारे में व्यवस्था मिलते हैं, हमें इस बारे में प्रक्रियाएं या नियम नहीं मिलते कि तलाक कैसे या क्यों पूरा किया गया। जाहिर है कि चूंकि मध्य पूर्व में तलाक प्रथागत और आम था, इसलिए इब्रानी लोग इसे सामान्य रूप से स्वीकार करते थे और तलाक के कारण और वे प्रक्रियाएं जिनका वे पालन करते थे वे केवल लंबे समय से चली आ रही प्रथाएं थीं। तलाक का प्रोटोकॉल इतना पुराना और इतना आम ज्ञान था कि बाइबल में भी इसका स्पष्टीकरण नहीं लिखा गया है। हमें केवल भजन, भविष्यद्वक्ताओं, नीति वचन और बाइबल की कुछ कहानियों में संकेत और अंश मिलते हैं।
दूसरी बात जो हम तुरंत पहचानते हैं वह यह है कि मूसा के युग में तलाक जितना आम था उतना ही पुनर्विवाह भी था। इसलिए जैसे कि प्रतिज्ञा लेने के मामले में, जिसके अनुसार प्रभु ने प्रतिज्ञा के बारे में केवल एक ही वास्तविक नियम दिया है कि यदि आप कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो आपको उसे पूरा करना होगा, अन्यथा यह पाप है, वैसे ही प्रभु कहते हैं कि यदि आप तलाक लेते हैं तो फिर से विवाह करने के संबंध में कुछ निषेध हैं। ऐसा कोई लिखित व्यवस्था नहीं है जो कहता हो कि आप तलाक नहीं ले सकते, और फिर भी प्रभु ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विवाह जीवन भर के लिए होना चाहिए।
अध्याय 24 के पहले कुछ पदों में पुनर्विवाह के बारे में जो निषेध है वह यह है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला करता है और फिर वह किसी दूसरे पुरुष से पुनर्विवाह कर लेती है और फिर उसका नया पति या तो मर जाता है या वह भी इस महिला को तलाक दे देता है तो वह अपने मूल पति से पुनर्विवाह नहीं कर सकती। लगभग 800 साल पहले रामबाम मैमोनाइड्स ने कहा था कि उनका मानना है कि इस व्यवस्था का कारण मूल रूप से एक बड़े पैमाने पर पत्नी की अदला बदली की योजना को रोकना था, जिसके तहत एक पुरुष शादी करता है और डिजाइन के अनुसार अपनी पत्नी को तलाक देता है, थोड़े समय के लिए किसी दूसरी पत्नी से शादी करता है, अपनी पहली पत्नी से दोबारा शादी करता है और फिर इस प्रक्रिया को अन्य महिलाओं के साथ अक्सर दोहराता है। विचार यह था कि व्यवस्था रूप से शादी करके और तलाक देकर और फिर से शादी करके और फिर से तलाक लेकर वह अपनी यौन वासनाओं को अलग अलग महिलाओं के साथ पूरा करेगा, क्योंकि तकनीकी रूप से वह प्रत्येक महिला से विवाहित था, भले ही यह केवल कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो। इसलिए वह अपनी शादी के बाहर या विवाह के बाहर यौन संबंध बनाकर व्यभिचार के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा लगता है कि चाहे यहूदी हों या ईसाई, हम हमेशा एक अच्छे बचाव की तलाश में रहते हैं, लेकिन यह बात स्पष्ट है, प्रभु तलाक को स्वीकार नहीं करते। मलाकी 2:16, क्योंकि मैं तलाक से घृणा करता हूं, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, और जो अपने वस्त्र को हिंसा से ढकता है, यहोवा एदोनाई की यह वाणी है, इसलिए अपनी आत्मा पर ध्यान दो और विश्वासघात मत करो। अब व्यवस्था विवरण में पहले पति को अपनी पूर्व पत्नी से दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं दिए जाने का कारण, जिसे उसने तलाक देने के बाद तलाक दे दिया था, पद 4 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वह अब अशुद्ध हो गई है। इसलिए यदि उस पहले पति ने ऐसी परिस्थिति में पूर्व पत्नी से दोबारा शादी करने जैसा काम किया तो वह इसराइल की भूमि पर उस अशुद्धता को लाएगा, और भूमि इतनी पवित्र है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। जहां पद 1 में कहा गया है कि पुरुष अपनी पत्नी को तलाक इसलिए देता है क्योंकि आपके अनुवाद के आधार पर उसे उसमें कुछ अप्रिय लगता है, या वह उससे नफरत करता है, या वह उसे नाराज करती है, यह किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए ईश्वरीय रूप से स्वीकार्य कारणों की एक विस्तृत सूची बनाने का प्रयास नहीं है। यह केवल एक सामान्य बात है जो यह स्पष्ट करती है कि पुरुष अब किसी भी कारण से उसे नहीं चाहता है, और यह भी नहीं कह रहा है कि परमेश्वर की नजर में यह ठीक है कि एक आदमी के पास तलाक के लिए कोई अच्छा कारण नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था इतना अस्पष्ट था कि हम पाते हैं कि संत पौलुस ने इस बात पर टिप्पणी की कि उनका मानना है कि तलाक के लिए केवल अच्छे कारण क्या हैं, और फिर भी पूरी बात बहुत ही अप्रिय और बदसूरत है। यह शिक्षाप्रद है कि बाइबल तलाक को मुख्य रूप से विवाह की विफलता के रूप में देखती है, यानी जबकि विवाह एक संस्था है, तलाक एक संस्था नहीं है, यह एक अनुचित रूप से टूटा हुआ मिलन है। पहला कुरिन्थियों 7:15, परंतु यदि अविश्वासी पति या पत्नी अलग हो जाए तो अलग हो जाए, ऐसी दशा में भाई या बहन दासत्व में नहीं है, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें शांति के जीवन के लिए बुलाया है। यीशु ने भी इस विषय पर कुछ सीधे शब्द कहे थे, मत्ती 19:9। अब मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से तलाक देता है और दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है।
याद रखें कि बाइबल के जमाने में तलाक देने का काम पुरुष ही करते थे, इसलिए इस बात का मतलब यह मत समझिए कि जहां एक पुरुष अपनी पत्नी को उसके व्यभिचार के लिए तलाक दे सकता है, वहीं एक महिला किसी पुरुष को उसके व्यभिचार के लिए तलाक नहीं दे सकती। अब इस बात पर ध्यान दें, कम से कम व्यवस्था विवरण 23 के व्यवस्था के अनुसार एक आदमी द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देने और तकनीकी रूप से इसके विपरीत और फिर उनके पुनर्विवाह करने पर कोई आपत्ति नहीं है। पुनर्विवाह पर प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है जब एक साथी अंतरिम अवधि में किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर ले। पद 5 से शुरू करते हुए हम उस विषय से दूर जाने लगते हैं जो पिछले 2 अध्यायों का संदर्भ रहा है, व्यभिचार को प्रतिबंधित करने वाली 7वीं आज्ञा। अब हम एक ऐसे खंड में प्रवेश करते हैं जो मानवीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, और पहला नियम यह है कि एक आदमी जो अभी अभी विवाहित हुआ है उसे 1 साल के लिए सैन्य सेवा से अलग रखा जा सकता है। बताया गया कारण उसकी पत्नी को खुशी देना है।
अब संस्करणों में थोड़ा भिन्नता है, लेकिन पद 5 में शाब्दिक रूप से यह कहा गया है, जब कोई पुरुष नई पत्नी लेता है। यह नई पत्नी शब्द ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुनर्विवाह पर लागू नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि यह केवल उस पत्नी पर लागू होता है जिससे पुरुष का पहले कभी विवाह नहीं हुआ हो, इसलिए वह नई है।
सतह पर यह एक बहुत अच्छी बात लगती है। नए दूल्हा दुल्हन को युद्ध के लिए जाने से पहले 1 साल साथ रहने और एक दूसरे की संगति का आनंद लेने का मौका देना, लेकिन पुरुष द्वारा अपनी नई पत्नी को दी जाने वाली खुशी उसके गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने से कहीं ज्यादा जूरी होती है, न कि सिर्फ नवविवाहितों के लिए होने वाली खुशी और उत्साह से, हालांकि इसके लिए समय देना वास्तव में इस व्यवस्था के उद्देश्य का हिस्सा है। आजकल यह प्रचलन में है और आम तौर पर माता पिता की सलाह भी कि हाल ही में विवाहित जोड़े बच्चे पैदा करने से बचें, जब तक कि वे अपने विवाहित जीवन में व्यवस्थित न हो जाएं और एक जोड़े के रूप में पर्याप्त समय न बिता लें। लेकिन बाइबल के युग में यह सबसे बड़ी उम्मीद थी कि उनकी शादी की रात नई पत्नी गर्भवती हो जाए, और अगर तब नहीं तो जितनी जल्दी हो सके। बच्चे और उम्मीद है कि एक बेटा होना एक नए परिवार के लिए सब कुछ था, और खासकर तब जब एक आदमी जल्द ही युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा हो और इस बात की वास्तविक संभावना हो कि वह मर भी सकता है। एक बेटे का मतलब था कि उस आदमी का जीवन सार और वंश आगे बढ़ेगा, और पत्नी के लिए इसका मतलब था कि उसे शादीशुदा होने के बावजूद बच्चे पैदा न करने की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। याद रखें, इब्रानियों के लिए अब्राहमिक वाचा में उनका प्राथमिक कर्तव्य फलदायी होना, प्रजनन करना था। किसी पुरुष या महिला के लिए संतान पैदा न करना उस वाचा को निभाने में विफलता थी, और यह बहुत गंभीर मामला था जिससे बेरी सार्वजनिक शर्मिंदगी होती थी। पद 6 और 7 में निहित अगले नियम सामान्य पढ़ने पर जितना प्रतीत हो सकते हैं उससे कहीं अधिक व्यापक है। ये नियम जीवन के सम्मान के बारे में है। पहला नियम इस बात से संबंधित है कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति किसी बहुत गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे या भोजन उधार देता है और अपने ऋण के लिए किसी प्रकार की गारंटी, संपार्श्विक चाहता है। और दिया गया उदाहरण यह है कि ऋणदाता उधारकर्ता से संपार्श्विक के रूप में ऊपरी चक्की का पत्थर नहीं ले सकता है। मध्य पूर्व के हर परिवार में अनाज की चक्की एक जरूरी औजार हुआ करती थी। ये उपकरण हालांकि आदिम थे, महंगे थे और इन्हें बनाना मुश्किल था। इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था, और यह आम बात थी कि एक अनाज की चक्की सैकड़ों सालों तक इस्तेमाल की जाती थी, उसके बाद एक नई चक्की की जरूरत पड़ती थी। इसमें 2 हिस्से होते थे जिन्हें ऊपरी और निचला चक्की कहा जाता था। निचला हिस्सा एक भारी सपाट पत्थर की सतह थी
जहां अनाज रखा जाता था, और ऊपरी हिस्सा वह छोटा हिस्सा होता था जिसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में पकड़ता था। ऊपरी चक्की का इस्तेमाल अनाज को निचले हिस्से से कुचलने के लिए किया जाता था। अगर ऊपरी चक्की ले ली गई या खो गई तो अनाज की चक्की अनिवार्य रूप से बेकार हो गई। अनाज को प्रतिदिन पीसकर आटा बनाया जाता था। किसी परिवार की चक्की उनसे छीन लेना उन्हें जीविका के साधन से वंचित करना था, किसी परिवार को जीविका के साधन से वंचित करना उन्हें जीवन से वंचित करना था। और यही इस व्यवस्था का उद्देश्य है, और अपहरण से निपटने वाले अगले व्यवस्था का भी यही उद्देश्य है। यह सिद्धांत हमारे धन उन्मुख पूंजीवादी समाज में कभी कभी पीछे धकेल दिया जाता है, और वह यह है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, किसी व्यक्ति से उसकी जीविका चलाने का एकमात्र साधन छीनना नैतिक रूप से निंदनीय है, खासकर तब जब यह केवल गारंटी देने या ऋण चुकाने के लिए हो।
इसलिए इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे की जान नहीं चुरानी चाहिए, जिसे अपहरण कहते हैं। बाइबल में अपहरण का मतलब है किसी को अपने निजी इस्तेमाल के लिए गुलाम बनाना या किसी दूसरे को लाभ के लिए बेचना। आम तौर पर यह समझा जाता है कि इसमें दुर्व्यवहार भी शामिल है, पीड़ित के साथ जानवर या संपत्ति जैसा व्यवहार करना। ऐसा करने की सजा अपेक्षित है, जान के बदले जान, अपराधी को मृत्यु दंड। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो हमें उस समय समाज के संचालन के तरीके को ध्यान में रखना होगा। युद्ध में विजेताओं के लिए लोगों को ले जाना और उन्हें गुलामों के रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से सामान्य बात थी। इसे अपहरण नहीं बल्कि युद्ध की लूट माना जाता था। इसके अलावा विशेष रूप से इसराइल में यह सामान्य बात थी कि महिलाओं और बच्चों को किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति के रूप में देखने के बजाय इसराइली समाज में आत्मसात कर लिया जाता था। हमने पहले के व्यवस्थाओं में देखा है कि दासों और नौकरों, चाहे वे विदेशी हों या इब्रानी, के साथ दुर्व्यवहार प्रतिबंधित है। इसका एक अच्छा उदाहरण शेखेम की घटना थी, जब लेवी और शिमोन ने सभी वयस्क पुरुषों का नरसंहार किया था और शहर की महिलाओं और बच्चों को दास बना लिया गया था। मूल रूप से इसका मतलब यह था कि उन्हें जबरन इसराइल की आबादी में शामिल किया गया था, फिर भी उन्हें अमानवीय या सस्ते श्रम के लिए बेरहमी से मारे जाने वाले लोग नहीं माना जाता था। हालांकि अपहरण का व्यवस्था जरूरी नहीं कि पीड़ितों के रूप में केवल संभावित इजरायली नागरिकों से ही संबंधित था, लेकिन पद 7 में जिस तरह से इसे लिखा गया है उसका अर्थ है कि इस विशेष विनियमन का उद्देश्य यही था। मैं इस सप्ताह के पाठ का समापन एक बिंदु पर चर्चा करके करना चाहता हूं, जिसके बारे में मुझे आशा है कि मैं इसे अच्छी तरह से समझा पाऊंगा, क्योंकि विशेष रूप से अगले कुछ व्यवस्था जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जब हम अंततः परमेश्वर के वचन में पैटर्न के अद्भुत अस्तित्व और प्रकृति को आत्मसात कर सकते हैं, तब हम अंततः उसके वचन को और अधिक पूरी तरह से समझने की स्थिति में होंगे, और साथ ही उन भविष्यवाणियों को बेहतर ढंग से सुलझाने में सक्षम होंगे जिनके निकट भविष्य में पूरा होने की हम सभी उत्सुकता से और शायद भयभीत होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं।
यह मुद्दा यह है, मैंने कई बार कहा है कि मूसा का व्यवस्था न केवल वास्तविक और मूर्त है, यह एक ही समय में आने वाली चीजों का एक प्रकार और एक छाया है। यह एक या दूसरा नहीं है, व्यवस्था दोनों है। यह एक द्वैत है जो कम से कम दो स्तरों पर एक साथ मौजूद है और काम करता है। कुछ मामलों में वे छायादार आने वाली चीजें मसीहा यीशुआ के आगमन के परिणाम स्वरूप पहले ही हो चुकी हैं। दूसरी ओर माउंट सिनाई पर मूसा के माध्यम से दिए गए व्यवस्था न तो दृष्टांत थे, न ही चिकनी चुपरी बातें, न ही वे असंभव आदर्श थे, और इसलिए यहोवा द्वारा कोई गंभीर अपेक्षा नहीं की गई थी कि उनका पालन किया जाएगा। व्यवस्था विवरण 30:10, परंतु यह सब तभी होगा जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर की बात ध्यान से सुनोगे और उसकी आज्ञाओं और विधियों का पालन करोगे जो इस तोरह की पुस्तक में लिखी है, और तुम यहोवा अपने परमेश्वर की ओर अपने पूरे मन और पूरे प्राण से फिरोगे। 11 यह आज्ञा जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं है, यह तुम्हारी पहुंच से परे नहीं है, परमेश्वर का पूरा इरादा था कि तोरह व्यवस्था के इन सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाए। उन्होंने मूसा को 10 सुझाव नहीं दिए और फिर 603 और दिशा निर्देश दिए। और फिर भी हम जानते हैं कि इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे एक तरफ मूलभूत सिद्धांत थे और दूसरी तरफ व्यवस्था और आज्ञाएं इन अंतर्निहित सिद्धांतों और आदर्शों को प्रदर्शित करने का एक साधन थी, जिन्हें अंततः मसीहा द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सदियों से लोग व्यवस्था और मसीह के बीच के संबंध को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। मैं आपको यह बताने के लिए यहां लाया हूं कि परमेश्वर के सिद्धांतों को बाइबल की कई कहानियों और कहानियों में समाहित करके प्रदर्शित करने का पैटर्न, चाहे वे किसी भी समय अवधि में घटित हुई हों, केवल उन्हीं सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझा जाना और फिर बाद की पीढ़ियों में घटित कहानियों में अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाना, केवल उस व्यवस्था को देने तक सीमित नहीं है जिसे बाद में यीशु मसीह के जीवन में साकार किया गया था। इसीलिए जब हम करीब से देखते हैं तो हम पाते हैं कि सृष्टि की कहानी में निहित सिद्धांतों को कुलपिताओं की अद्भुत कहानियों में समझाया गया था। कुलपिताओं की कहानियों में निहित सिद्धांतों का विस्तार किया गया और व्यवस्था देने में उन्हें और भी अधिक स्पष्ट किया गया। व्यवस्था में निर्धारित सिद्धांतों को यीशु के आने के साथ इरादे और संचालन के दूसरे स्तर पर ले जाया गया, क्योंकि उन्होंने उस भावना को और अधिक पूरी तरह से समझाया जिसके साथ उनका पालन किया जाना था। और यीशु के जीवन में निभाए गए सिद्धांत और उनके दृष्टांतों में बताए गए सिद्धांत सहस्राब्दी साम्राज्य में उनके नियम और शासन के रूप में और भी अधिक परिष्कृत और साकार हो जाएंगे। ये सभी ईश्वर सिद्धांत इतने सटीक रूप से जुड़े हुए हैं कि मानव जाति के इतिहास में हजारों वर्षों की प्रगति और मानव समाजों के भीतर आश्चर्यजनक परिवर्तनों और विविधताओं के बावजूद हम सहस्राब्दी राज्य की पूर्णता में उन्हीं सटीक सिद्धांतों को लागू होते देखेंगे जो हमने सृष्टि की कहानी में देखे थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये धर्मशास्त्रीय ईश्वर सिद्धांत अपरिवर्तनीय हैं, वे कभी नहीं बदलते। वे स्वर्ग में या पृथ्वी पर या यहां तक कि आने वाली नई पृथ्वी पर भी लागू होने पर भी एक जैसे ही रहते हैं। जब हम तोरह में उन आकर्षक कहानियों को पढ़ते हैं जो कुलपिताओं अब्राहम इसहाक और याकूब के युग में घटित हुई थीं, तो वे अंतर्निहित मूल ईश्वर सिद्धांत, जिन्हें स्पष्ट रूप से पहचानना और शिनाख्त करना हमेशा इतना आसान नहीं होता, वास्तव में उन कई व्यवस्थाओं और आज्ञाओं के लिए मंच तैयार कर रहे हैं जो मूसा बाद में माउंट सिनाई पर इसराइल के लोगों को देगा। जब हम व्यवस्था के बारे में पढ़ते और सीखते हैं, जैसा कि हम व्यवस्था विवरण में हैं, तो इनमें से कुछ व्यवस्थाओं को लेना, उत्पत्ति की पुस्तक में वापस जाना और फिर इन व्यवस्थाओं में व्यक्त सिद्धांतों को इन कहानियों में प्रकट होते और निभाते हुए देखना और यह देखना कि यह सब कैसे जुड़ता है, एक सार्थक अभ्यास है। इन शुरुआती बाइबल कहानियों में जिन सिद्धांतों को हमने पहले कभी नहीं पहचाना, वे अचानक और स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाते हैं। 20वीं और 21वीं सदी के कई बाइबल विद्वान इन असंभव रूप से निर्बाध और पूरी तरह से अंत स्थापित संबंधों के बारे में इतनी गहराई से जानते हैं कि वे केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह सब कुछ कुछ चतुर संपादकों द्वारा तथ्य के बाद निर्मित और बुना गया था। अब कई आधुनिक शिक्षाविदों की स्थिति यह है कि उदाहरण के लिए निर्गमन और व्यवस्था विवरण की पुस्तकों को उत्पत्ति की पुस्तक से पहले लिखा जाना चाहिए था, या कि उत्पत्ति में बाद की तारीख में बड़े संशोधन किए गए थे। और यही कारण है कि इन अनाम संपादकों ने इस ढोंग को अंजाम दिया ताकि माउंट सिनाई के नियम अब्राहम इसहाक और याकूब के बारे में कहानियों में उनके अंतर्निहित सिद्धांतों में दिखाई दें जो सैकड़ों साल पहले घटित हुए थे। वे यह धारणा इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ी है लेकिन उनका विश्वास छोटा है। वे यह स्वीकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर के सिद्धांत बाइबल में इतनी जल्दी मौजूद हो सकते हैं और फिर पूरी तरह से अपरिवर्तित, सुसंगत और यहाँ तक कि सदियों बीतने के साथ साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक अपनी गहराई में बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही विश्वासियों, यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि परमेश्वर भविष्य में क्या करने जा रहा है, तो अतीत के पैटर्न को देखें। यदि कोई आपसे कहता है कि अभी तक पूरी न हुई बाइबल की भविष्यवाणी इस तरह से पूरी होनी चाहिए कि पहले के परमेश्वर सिद्धांतों को नए सिद्धांतों के पक्ष में खत्म कर दिया जाए, तो संदेह करें। अगले सप्ताह हम व्यवस्था विवरण 24 से कुछ नियमों को लेंगे और समय में पीछे जाकर देखेंगे कि इन नियमों की नींव कुलपिताओं की कहानी में कैसे दिखाई देती है।